السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز نوجوان ساتھیوں، ہم پہ اللہ کا یہ ایک انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان ماں کی گود نصیب فرمائی ہے، اور مسلمان باپ کا سایہ نصیب فرمایا ہے. ہمارے کانوں میں سب سے پہلے اللہ اکبر کی آواز گونجی ہے، ہمارے ارد گرد کی فضاؤں میں اسلام اور مسلمانوں کے تذکرے تھے. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے. جن کے پاس یہ نہیں ہے، کتنے ہی آج گائے کا پیشاب پی رہے، کتنے ہیں ان میں سے جو مینڈکیں کھا رہے، کتنے دنیا میں ایسے جو بظاہر بہت سمجھدار سمجھے جاتے ہیں لیکن ان کے دسترخوان کی بہترین ڈش خنزیر ہے. یہ اللہ ہی کا تو انعام ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. میرے عزیزوں، موبائل میں لے لوں اور پتا ہوں کہ یہ 10,000 روپے کا ہے، گم جائے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، موبائل چلا گیا، کیونکہ یہ اندازہ ہے کہ یہ 10,000 روپے کا ہے. اور 10,000 ایسے نہیں آتے میاں، محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس کے گم جانے پہ تکلیف ہوتی ہے. آج کے مسلمان کو اسلام کی قیمت اتنی بھی پتہ نہیں جتنی 10,000 کی ہوتی ہے. اگر چلا بھی جائے تو اسے افسوس نہیں ہوتا کہ میاں اسلام گیا ہے، اس لیے کہ اس 10,000 پہ تو لگتا ہے کچھ لگا ہے، اس اسلام پہ لگا کچھ نہیں. نکل بھی جائے تو اسے افسوس نہیں ہوتا. گاڑی لگ جائے تو ماں بھی کوستی، باپ بھی کوستا ہے، یہ بھی سوچتا ہے گاڑی لگ گئی. پتہ ہے گاڑیاں اتنی آسانی سے نہیں آیا کرتی، لیکن آج اس کی زندگی سے اسلام نکلتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں کہ اسلام کتنی مشکل سے آیا کرتا ہے، اسے اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسے بہت آسانی سے مل گیا، اسے اندازہ ہی کوئی نہیں کہ اسلام کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت، اللہ کا کتنا بڑا انعام. قرآن نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ کل قیامت میں جب کامیابی اور ناکامی کے نتائج دیے جائیں گے، اور جن کے بعد اسلام کا سکہ ہوگا، انہیں کامیابی کے لیے بلایا جائے گا، تو جو لوگ اس سے محروم ہوں گے وہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، اور اس افسوس کے مارے اپنی انگلیاں بھی چبا لیں گے، اے کاش کے مسلمان ہوتے. وہاں پتہ چلے گا نا اس کی کیا قیمت ہے. तो मेरे अजीजों, जो चीज आसानी से मिल जाए, बस औकात उसकी कदर नहीं होती और उसके जाया होने पर अफसोस नहीं होता। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती और अगर वो हाथ से चले जाए तो अफसोस नहीं होता। हम मदीना मुनव्वरा में बैठे थे तो हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग आलिम थे, कहने लगे इस वक्त दुनिया बेचैन है और जो लोग गंदगी के इंतहा को पहुंच चुके हैं उन्हें सुकून नहीं मिला। वो क्लब भी चले गए, मौसीकी भी सुन ली, सारे नशे भी कर लिए, उन्हें सुकून नहीं मिला। वो इस्लाम के दरवाजे पे हैं कि खोले और हम अंदर दाखिल हो जाए। तो कहने लगे 20 आदमी रोजाना हिंदुस्तान में हमारे हाथ पे कम से कम मुसलमान होते, 20 आदमी। लेकिन साथ ये भी कहने लगे इससे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि तकरीबन इतनी तादाद रोज मुसलमानों की इस्लाम से निकल भी जाती है। एक तरफ तो दुनिया सारी गंदगियां कर करके कुछ भी नहीं मिला, सब कर लिए, सारे तमाशे कर लिए, न सुकून मिला, न चैन मिला, न राहत मिली, न मोहब्बतें मिली, न इंसानियत मिली। तो वो दौड़ते हैं इस्लाम की तरफ, दरवाजे पे खड़े हैं, खोलने की देर है, मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन फरमाने लगे इसी तादाद में लोग इस्लाम से निकल भी रहे इसलिए कि इन्हें ये इस्लाम माँ के गोद में मिला था, इन्हें कदर नहीं है। कहने लगा अगर कहीं हम खबर पढ़ते हैं कि फलां बड़ा आदमी मुसलमान हुआ तो नीचे सुर्खी होती है फलां बड़ा आदमी इस्लाम छोड़ गया। कहीं हमें खबर पढ़ने को मिलती है कि फलां आदमी मुसलमान होकर उसने मुसलमान घर में शादी कर ली, तो खबर मिलती है कि फलां लड़की इस्लाम छोड़ के हिंदू बन के हिंदुओं से शादी कर ले। क्या ये दोनों खबरें साथ साथ चलती हैं? तो वो कहने लगे कि जिन्हें घर में मिल गया इस्लाम बिन मांगे के, उन्हें कदर नहीं है, उन्हें कदर नहीं। और जो दुनिया इस्लाम को छोड़ के जिंदगी गुजार रही थी उन्होंने सारे तमाशे देख लिए, वो इस्लाम की तरफ दौड़ रही है, उन्होंने सारी मस्तियां कर ली, वो इस्लाम की तरफ दौड़ रही है। और जिसके घर में अल्लाह ने दिया इसे कदर नहीं है, कितनी बड़ी दौलत है, क्या बड़ी दौलत है, इसे पता ही नहीं ये कितनी अजीम शान नेमत है अल्लाह की। इसलिए अगर चला जाए इस्लाम तो इसे पता भी नहीं चलता कि कोई चीज गई है या इसे बचाना है या ये जाया हो रहा है, कदर ही कोई नहीं। बस बात ये अपनी जबान से ऐसे ऑल फॉल बातें कर देता है कि इस्लाम चला जाता है। बस बात मेरे नबी की सुन्नत का मजाक करता है, ये ऐसा है जैसे उसने नबी से मजाक किया तो इस्लाम चला जाता है। बस औकात ये अल्लाह के किसी हुक्म का मजाक उड़ाता है, ये ऐसा है जैसे अल्लाह का मजाक उड़ाता है तो इस्लाम चला जाता है। लेकिन ये तो आज हमारे स्कूल कॉलेजों में आम है ना, यानी अगर कोई तफरी करनी हो तो किसी दीनदार को देख लो तफरी शुरू हो जाएगी। अगर तफरी करनी हो तो किसी दीनदार को देख लो तफरी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं कि मैं किसका मजाक उड़ा रहा हूं, किसका मजाक उड़ा रहा हूं। तो मेरे अजीजों, आज जिस तरीके से दुनिया इस्लाम के दरवाजे पर खड़ी है, बदकिस्मती से जो पैदाइशी मुसलमान है उसकी नाकदरी की वजह से इस्लाम उसके घर से निकल भी रहा है, उसके घर से निकल भी रहा है। यानी हम में से कितने मुसलमान हमने अपने तलबा अपने साथियों में देखे होंगे नौजवानों में जिन्हें कलमे के अल्फाज भी नहीं आते। हम कितने ऐसों को जानते होंगे जिनके पास डिग्री होंगी लेकिन कुरान की एक सूरत भी नहीं, बल्कि आपने तो सुना होगा आपके वजीरे दाखिला को सूरह इखलास भी नहीं आती। हाय हाय, वो भी किसी इदारे से पढ़ कर गया है ना, था तो नाई लेकिन फिर भी किसी इदारे से तो पढ़ के गया होगा, फिर भी किसी इदारे से तो पढ़कर गया होगा। तो कितना ये हाल है, यानी अगर हमारा अब्बा चले जाए दुनिया से और बच्चे को जनाजा की दुआई ना आए, हाय हाय कैसा मुसलमान, अपने बाप के लिए ये भी नहीं कर सका। तो विदेशी मुसलमान तो बहुत मर्दम शुमारी में तो बहुत, लेकिन चूंकि बिन मांगे इस्लाम घर में आ गया इसलिए उसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं, उसका अंदाजा नहीं कितनी बड़ी नेमत है। इसलिए कितने होंगे जिन्हें कलमे का मफहूम भी नहीं आता, आजान के अल्फाज भी नहीं आते, नमाज भी पूरी नहीं आती। यकीन जाने अगले दिन एक खातून का फोन आया, बल्कि उसके मियाँ ने फोन किया कि कई साल हो गए हमारे बच्चे भी हैं, हज भी कर लिए, नमाजें भी पढ़ ली, लेकिन हमारे बच्चे को पाक होने का मसला मालूम नहीं था। पाक कैसे, तो गुसल कैसे करते हैं, गुसल का तरीका ही पता कोई नहीं। हम तो बहुत सारे तो ऐसे समझे ना कि गुसल का तरीका यही है कि किसी हौज में छलांग लगा दो या अच्छा शैम्पू इस्तेमाल कर लो, फिर तौलिया इस्तेमाल कर लो, गुसल हो गया। ऐसा तो नहीं है ना, यानी कितने ऐसे हैं जिन्हें गुसल करने का तरीका ही नहीं पता, शादियां भी हो गई, बच्चे भी हो गए, उन्हें पाक होने का पता कोई नहीं। क्या मर्द क्या औरत, यानी गुसल के तीन फर्ज, कुली करना, नाक में पानी डालना, पूरे जिस्म पे ऐसा पानी बहाना कि एक बाल भी खुश्क ना हो, ये तीन है। अगर उसने कुली नहीं की, नाक में पानी नहीं डाला, कुछ भी करता रहे पाक नहीं होगा, नापाक। और इसी नापाकी में उसकी औलादे पैदा हो रही, इसी नापाकी में वो नमाज पढ़ रहा, इसी नापाकी में वो बाजार हज कर रहा, ये एक नहीं, मैं आप बता रहा हूं कितने हमारे दोस्त हैं, कितने हमारे नौजवान हैं। एक तरफ से दुनिया इस्लाम के दरवाजे पे खड़ी है, क्योंकि दरवाजा खोले हम मुसलमान हो जाएं, कोई दरवाजा खोले हम मुसलमान, और यकीन जाने बाज ने मुसलमान इतने आगे बढ़ते हैं। उन्हीं के पास हम बैठे थे, उन्हें एक फोन मिलवाया, एक हिंदू पिंडत था, वो मुसलमान हुआ था। तो जैसे फोन बंद किया उन्होंने, तो मुझे उन्होंने बताया ये 6 महीने पहले मुसलमान हुआ है और अब तक इसके तहज्जुद नहीं छूटे, तहज्जुद नहीं छूटे। कदरदान है ना, कदर आती है, इसलिए कि वो पैदाइशी मुसलमान नहीं है, उन्होंने कुर्बानी से इस्लाम कबूल किया है, कुर्बानी से। एक तरफ तो ये है दुनिया का हाल, हाँ, कि मुसलमान हो रहा है और तहज्जुद गुजार बन रहा है, और एक ये पैदाइशी है कि जब से मुसलमान बाले हुआ है आज तक इसकी फजर की नमाज नहीं हुई है। एक ये है, ये पैदाइशी है ना, कि जब से बाले हुआ एक भी इसकी फजर की नमाज नहीं हुई, और एक तरफ वो है जब से मुसलमान हुआ एक भी तहज्जुद नहीं छूटा। एक भी तहज्जुद नहीं छूटा। तो मेरे अजीज हो, चूंकि चीज मुफ्त में मिल गई, कुछ लगा नहीं, कुछ लगा नहीं, इसलिए उसे बचाने की फिक्र भी नहीं कि इस्लाम क्या नेमत है। फिर ये दुनिया अंधेर नगरी है, यहां तो खरा खोटा है और खोटा खरा है, यहां तो अकलमंद बेवकूफ है और बेवकूफ अकलमंद है, यहां तो रोशन ख्याल तारीख ख्याल समझा जाता है और तारीख ख्याल रोशन ख्याल समझा जाता है। यह तो गंदा तरक्की याफ्ता समझा जाता है और गैरतमंद और बाहया तंग नजर समझा जाता है। ये तो अंधेर नगरी है, ये तो अंधेर नगरी है। यह तो इंसान की कीमत पैसों के बुनियाद पर, ओहदे के बुनियाद पर, करेक्टर की बुनियाद पर नहीं लगती, किसका किरदार कैसा है, किरदार की बुनियाद पर नहीं लगती। इसलिए अच्छी चीजों की कीमत ही गिर गई। हया, गैरत, अमानत, दयानत, सच्चाई, ये इस्लाम के सारे फूल हैं। जब इस्लाम ही नहीं रहा तो ये फूल भी नहीं रहे और इनकी कदर भी नहीं रही, इनकी कदर भी नहीं रही। यानी आज के नौजवान के जबान पर सूरह फातिहा नहीं आती, वो स्कूल से निकलता है तो मजाक क्या निकलता है, बड़े बेहूदा, यानी मजाक भी गाली से होता है, मजाक भी गाली से। अब इसकी जबान पर आप भाईजान, आ जनाब, ये अल्फाज नहीं, तू ओए, ये अल्फाज इस्तेमाल होता है। यानी ये 10 साल पहले नहीं था कि नौजवान इस अंदाज से बेहूदा गुफ्तगू करे। शायस्तगी खत्म, अदब खत्म। तो एक तरफ तो वो मुसलमान जो नए हुआ और उसके 6 महीने तक तहज्जुद नहीं रहे, और एक तरफ हमें, हम में से कितने ऐसे होंगे कि जिन्होंने आज तक फजर की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ी होगी। कहने में तो ये भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, लेकिन वो कुछ कुर्बानी देकर मुसलमान हुआ और मेरे घर में इस्लाम आया। मेरे घर में मुसलमान, मुझे इसकी कीमत का अंदाजा नहीं। जिन्होंने कुछ लगाया होता है इस्लाम के लिए उनके यहां बड़ी कीमत होती है, बड़ी कीमत। और इस्लाम में जरा सी कमी भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। कोई आदमी लाखों की गाड़ी ले ले और एक शीशा खाली चोरी हो जाए, हालांकि पूरी गाड़ी, इंजन भी ठीक, खिड़कियां भी ठीक, बॉडी भी ठीक, सिर्फ एक शीशा ले गया, तकलीफ होती नहीं होती? कोई कह मियां क्या मसला यार, सारी गाड़ी तो मौजूद है, खाली एक शीशा ही तो गया है। हाँ, लेकिन चूंकि उसका पैसा लगा है उस पर, उसकी खूबसूरती का ऐसे अंदाजा है, तो बड़ी तकलीफ होती है यार। आज इस्लाम की गाड़ी से कोई शीशा भी लेके जा रहा, कोई टायर भी लेके जा रहा, कोई इंजन भी चोरी कर रहा है, लेकिन इसे फिर भी परेशानी नहीं होती। रहा क्या है इस्लाम का हमारे पास? हमारे बुजुर्ग हैं शेखुल इस्लाम मुफ्ती मुत्तकी साहब, उन्होंने एक मिसाल लिखी है, फरमाने लगे कुछ नाबीने आपस में बात करने लगे कि हाथी कैसा होता है, देखा कभी नहीं था किसी ने, आंखें जो नहीं थी। तो बाहर निकले हाथी को देखने के लिए, तो किसी ने कहा यह हाथी है, तो यूं हाथ रखा तो उसका हाथ हाथी के सूंड पे पड़ा, दूसरे ने हाथ लगाया उसका उसके कान पे पड़ा, तीसरे ने हाथ लगाया उसका उसके हाथ पे पड़ा। अब इनसे पूछा भाई हाथी कैसा था, सूंड वाले ने कहा रबड़ की तरह कोई चीज थी। यानी उसने समझा कि सारा हाथी यही है। जिसका कान पे हाथ पे पड़ा उससे पूछा हाथी कैसा था, कहा रबड़ पत्ती की तरह कोई चीज थी। तीसरे से पूछा जिसका हाथ पे पड़ा था, कहा लंबी सी कोई चीज थी। क्योंकि वो सर की आंखें उनके पास नहीं थी, अंधे थे, तो जिसके हाथ में जितना आया समझा हाथी यही है। अरसा हुआ है मुसलमानों के दिल की आंखें चली गई, इन्होंने अपने इर्द गिर्द जितना इस्लाम देखा उसमें समझा सारा इस्लाम यही है। इसके कॉलेज में कोई भी नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ जुम्मे को लोग पढ़ते हैं, इसने कहा सारा इस्लाम जुम्मे की नमाज पढ़ने का नाम है। इसने देखा कि लोग सिर्फ चार नमाजें मेरे घर में उठते, पांचवी के लिए कोई नहीं उठता। इसने कहा इस्लाम चार नमाज पढ़ने का नाम है। इसने देखा कि हमारे घर में कोई भी नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ नाम मुसलमानों का है, जनाजा पढ़ लेते हैं। इसने कहा सारा इस्लाम यही है। तो जिसके पास जितना इस्लाम उसने इर्द गिर्द देखा, उसे समझ सारा इस्लाम यही है। सुभानअल्लाह, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूरा इस्लाम देखा था, पूरा इस्लाम। इसलिए वो जब हुजूर के पास से गुजरे, उठ कर गए तो कहने लगे नाफका हमजला हमजला, तो कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गया। इसलिए कि वो कैफियत नहीं पाता जो मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास थी, जरा सी कमी भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरा इस्लाम देखा था, जरा सी कमी बर्दाश्त नहीं। हमने पूरा इस्लाम देखा नहीं, सब कुछ भी चला गया, हम कहते हैं इस्लाम ठीक है, हम मुसलमान हैं। तो जिस अंदाज से आज दुनिया इस्लाम के दरवाजे पर खड़ी है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इसी अंदाज से मुसलमान इस्लाम से निकल भी रहा है। देखो ना कितने हैं मुसलमान जिन्हें इस्लामी महीनों का नाम नहीं पता होगा, लेकिन ये पता है ईसाइयों के महीनों का नाम क्या है। कितने हैं, यानी कितने मुसलमान हैं जिन्हें अपने महीनों का नाम नहीं पता। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शवाल, ज़िलक़ादा, ज़ुलहज्जा, ये मुसलमानों के 12 महीने, ये नहीं पता। हाँ ईसाइयों के महीनों के नाम और साल पता है, कितने अफसोस की बात है। यानी कितने नौजवान है जिन्हें ये नहीं पता होता कि मुसलमानों का साल कब खत्म होता है, कब शुरू होता है। हाँ ईसाइयों का पता है कब शुरू होता है, कब खत्म होता है। देख रहे अभी तमाशे करेंगे लोग। हालांकि मुसलमानों का साल यकम मुहर्रम को शुरू होता, मुबारकबाद देनी चाहिए, अल्लाह तेरा ये साल मुबारक कर दे, नए साल के शुरू में मुबारकबाद दी जाइए, अल्लाह तेरा साल मुबारक कर दे। अल्लाह का नबी जब नया महीना भी शुरू होता दुआ किया करते, ए अल्लाह इस चांद को हमारे लिए बायस बरकत बना दे, चांद को बरकत बना दे। तो मुसलमानों का साल का आगाज यकम मुहर्रम, इसका इख्तिताम जुलहज्जा। ईसाइयों का साल शुरू खत्म होता है इन दिनों में, ईसाइयों का साल खत्म हो रहा है जनवरी से, उनका साल शुरू होता है मुसलमानों का यकम मुहर्रम से। लेकिन मेरे अजीजो, हम इस्लाम से इतने दूर हो गए कि अपनी चीजें भूलते चले जा रहे हैं। देखो ना आज के नौजवान को खिलाड़ियों के नाम याद हैं, सहाबा के नाम याद नहीं। अदाकारों की जिंदगी याद है, नबी के सहाबा की जिंदगी याद नहीं। यानी कितना उल्ट हो रहा है। देखो ना जिनकी जिंदगी इसे याद होती है ना, उन्हीं के तरीके इनकी जिंदगियों में आते हैं। पहले मुसलमान बच्चों से पूछे तुम कौन बनोगे, कहते मैं उमर बनूंगा, कौन बनोगे, मैं सिद्दीक बनूंगा, कौन बनोगे, उस्मान बनूंगा, कौन बनोगे, अली बनूंगा, कौन बनोगे, हसन। क्यों, उनके माहौल में तस्करे थे इन बड़े लोगों के। अब कौन बनोगे, मैं नाम नहीं लेता जिनका हम बोलते हैं कि वो बनेंगे, बच्चों से तो माई बोलती थी कि मेरा बच्चा क्या बोल रहा है कि वो बनेगा। वो तस्करी खत्म हो गए, वो तस्करी खत्म हो गए। तो मेरे अजीजो, हम इस नेमत इस्लाम की कदर नहीं कर रहे, कदर नहीं कर रहा। मेरे अजीजो, अल्लाह बड़ा गयूर है, दौलत न कदरी करने वालों को भी दे देता है। कि बाप मालदार था, बेटे ने कोई कदर नहीं की और नहीं कमाया, अल्लाह वो दौलत बेचे को देता है, वारिस बन जाएगा। हालांकि कदर नहीं की लेकिन वारिस बन जाएगा दौलत का। बाप जागीरदार था, बाप की मरती बेटा जागीरदार बन जाएगा, लेकिन बाप मुसलमान था, जरूरी नहीं कि नकदरी करने वाला बच्चा भी मुसलमान रहे, ये जरूरी नहीं। इसमें विरासत नहीं चलती भाई, इसमें तो कदर चलती है। जो कदरदानी करता है उसके पास ये रहता है, जो नहीं करता अल्लाह उससे ले लेता। अनुज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, तुम तो इस दौलत की नकदरी करो और अल्लाह तुम्हारे गर्दनों पे इसे तोक बना के रखे, ऐसा नहीं होगा। जो इसकी नकदरी करेगा अल्लाह फिर उससे ले भी लेगा, अल्लाह उससे ले भी लेगा। तो नेमत इस्लाम बड़ी दौलत है, लेकिन आज का मुसलमान इस नेमत की कदर नहीं कर रहा। तभी तो अल्लाह इनसे ले रहा है और जो कदरदान करने वाले अल्लाह उनको दे रहा है। दसियों लोग मुसलमान हो रहे हैं आज, दसियों लोग दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये अफसोस की बात है कि खुद मुसलमानों की औलादें वो इस्लाम छोड़ रही, खुद मुसलमानों की औलादें इस्लाम छोड़ रही। वो नया मुसलमान होता है उसे नबी की हर सुन्नत से बड़ी मोहब्बत होती है, और ये पुराना मुसलमान होता है सुन्नत वालों का मजाक उड़ाता है, सुन्नत वालों का मजाक उड़ाता है। नया मुसलमान होता है वो मस्जिद का आदी होता है, और ये पुराना मुसलमान है ये मस्जिद में जाना अपने लिए जिल्लत समझता है, तोहीन समझता है। तो मेरे अजीजो, जो दुनिया के अंदर सब कुछ कर चुके वो इस्लाम के दरवाजे पे खड़े हैं कि है कोई मुसलमान हमारे लिए दरवाजा खोल दे, है कोई? लेकिन ये खुद मुसलमान इसकी नकदरी करने की वजह से इस्लाम से निकल रहा, ये कदर नहीं कर रहा। भाई इस्लाम ऐसी चीज तो नहीं ना कि कुछ भी करते रहे फिर भी मुसलमान रहेंगे। एक शख्स आया और उसने तस्वीर बनाने वाले से, तस्वीर गोदने वाले से कहा कि मेरे कमर पे शेर बना दो। ये इसलिए होता है ना बसों का, जैसे आदमी शर्ट पहनता जिसमें शेर की तस्वीर हो जाके शेर लगे, हालांकि तस्वीरों से आदमी थोड़ी शेर बनता है। तो कहा मेरे पुश्त पे शेर की तस्वीर बना दो। तो उसने यूं चुबोया, रंग भरने के लिए सुई चुबोई, दर्द हुआ उसे। कहा क्या बना रहे हो? कहा शेर का सर बना रहा हूं। यार सर के बगैर ही बना दो। फिर सुई चुबोई, फिर दर्द हुआ। कहा क्या बना रहे हो? कहा शेर की दुम बना रहा हूं। क्या दुम के बगैर ही बना दो। अच्छा फिर उसने सुई चुबोई, कहा क्या बना रहा हूं? कहा गर्दन बना रहा हूं। कहा यार गर्दन के बगैर ही बना दो। उसने औजार फेंके, कहा ऐसा शेर मैंने नहीं देखा, सर भी ना हो, गर्दन भी ना हो, दुम भी ना हो। तो मेरे अजीजो, ऐसा इस्लाम अल्लाह ने भी नहीं उतारा जिसमें नमाज भी ना हो, जिसमें हया भी ना हो, जिसमें अखलाक भी ना हो, जिसमें पाक दामनी भी ना हो, जिसमें लुकमा हलाल भी ना हो, जिसमें नबी के तरीकों पर अमल भी ना हो। ऐसा इस्लाम अल्लाह ने भी नहीं उतारा कि कुछ भी ना करे और मुसलमान हो, ऐसा इस्लाम अल्लाह ने नहीं उतारा। इस्लाम तो एक बहुत खूबसूरत जिंदगी है, बहुत खूबसूरत जिंदगी, लेकिन अफसोस कि वो किताबों में रह गई, कुरान में रह गई, जिंदगियों में नहीं रही। जिन्हें अल्लाह ने घरों में दे दिया खुद इसकी नकदरी कर रहे हैं, खुद इसकी नकदरी कर रहे हैं, उनके घरों में इसकी कदर नहीं। अफसोस ये है कि इतनी बड़ी दौलत अल्लाह दे रहा है, इतनी बड़ी दौलत, जब इस्लाम जिंदगी में था ना मेरे अजीजो, यकीन जाने वहां मोहब्बतों की खुशबू थी, उल्फतों के फूल खिला करते थे, इस्लामी अखुवत और भाईचारगी की पूरी फिजा थी। جب حدیبیہ ہوا تو مسلمانوں کی تعداد ہمارے نبی کے ساتھ 1400 کی تھی, صلح ہو گئی کہ اب مدینہ واپس چلے جائیں, لیکن اس بات پر صلح ہوئی کہ مکہ والے اب مدینہ آ سکتے ہیں جو مشرک ہیں. 2 سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 تک ہو گئی. تلوار بھی نہیں چلی, زبان بھی نہیں چلی, صرف اسلام کا کردار اتنا پرکشش تھا کہ لوگ زبردستی سے زبردست مسلمان ہو رہے تھے, اور صرف 2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے لے کر 10,000 تک ہو گئی. کردار کی طاقت. اس لیے کہ اسلام جہاں آتا ہے بڑی خوشبو بکھیرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس ماحول میں اسلام ہو وہاں نفرتیں بھی ہوں, وہاں سکون بھی ہو, وہاں دلوں میں بے چینی بھی ہو, وہاں گھر میں لڑائیاں بھی ہوں, وہاں اولادوں کی نافرمانیاں بھی ہوں, وہاں میاں بیوی کی لڑائی اور جھگڑے بھی ہوں. مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوتا, مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوتا. ہاں جب اسلام نکلتا ہے تو محبت بھی نکلتی ہے, سکون بھی نکلتا ہے, راحت بھی نکلتی ہے, گھروں کی محبتوں کی فضائیں بھی ختم ہوتی ہیں جب اسلام نکلتا ہے. یہ ساری چیزیں اسلام کے ساتھ تھی. تو آج اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے اس کی قدر نہیں رہی. ایک صحابی ہے نوجوان, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا تو حضور نے فرمایا بیٹے تیرے ہاں حالات اچھے نہیں ہیں تو اپنے کلمے کا اظہار نہ کرنا, خاموش رہنا. لیکن ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ اسلام چھپتا کہاں ہے. بھتیجا چچا پہچان گیا کہ بھتیجے کی زندگی میں کچھ تبدیلی سی آ گئی ہے. آج تو تبدیلی لگتا ہی نہیں نا, میرے کالج میں میرے ساتھ عیسائی پڑھ رہا ہو اور ساتھ یہ مسلمان پڑھا تو پتہ نہیں لگتا کہ ان میں دونوں میں مسلمان کون سا ہے. میری یونیورسٹی میں ایک ہندو پڑھ رہا ہو اور ایک مسلمان ہو, پتہ نہیں لگتا ان دونوں میں مسلمان کون سا ہے. عیسائی بچی ہو اور ہندو بچی ہو پر فرق کرنا مشکل ہے. چند دن گزرے, چچا کہنا بھتیجا کچھ تبدیلی سے لگ رہی ہے. جو ایک نیا شخص مدینہ میں آیا ہے کہیں تم اس کے پاس تو نہیں چلے گئے. اب مسلمان جو تھا جھوٹ کیسے بولے, مسلمان جو تھا جھوٹ کیسے بولے. کہنے لگا ہاں مسلمان ہو گیا. تو چچا نے کہا بھتیجے یاد رکھنا گھر سے نکال دوں گا اور بے لباس کر کے نکالوں گا, یا میرے گھر میں رہنا ہے یا اسلام کا رہنا ہے. تو بھتیجے نے کہا اب چچا ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں, اب اسلام نہیں چھوڑ سکتا. اس سے پوچھو اسلام کی کیا قیمت ہے, اس سے پوچھو اسلام کی کیا قیمت ہے. ہاں میرے عزیزو, جب اسلام کے لیے آدمی کچھ کرتا ہے اور اس کی خاطر کو چھوڑتا ہے تب اسلام کی قیمت کا پتہ چلتا ہے. آج تو ہم اسلام بچانے کے لیے حرام محبتیں بھی نہیں چھوڑتے, اسلام بچانے کے لیے حرام دیکھنا بھی نہیں چھوڑتے, اسلام بچانے کے لیے حرام سننا بھی نہیں چھوڑتے, اسلام بچانے کے لیے اپنے دل میں جو حرام تصویر رکھی انہیں بھی نہیں چھوڑتے. اتنے بھی اسلام کی قدر نہیں ہے. ورنہ جب اسلام زندگی میں آتا ہے تو یہ اور ہی لگتا ہے, اس کے چہرے کی چمک, اس کی آنکھوں کی چمک, اس کا سکون, اس کا چین. پہلے نوجوانوں کی زندگیوں میں اسلام تھا, جب صبح اٹھتے تو ان کے چہروں پہ راتوں کے سجدوں کے نشانات, چہروں کی چمک, آنکھوں کی چمک, چہرے کا سکون. اب تو ہمارے بچوں کی معصومیت ہی چھین لی ہے گندے ماحول نے. بچے بچے نہیں رہے, نوجوانوں کو تو چھوڑ ہی دیجیے, بچے بچے نہیں رہے. اتنی بڑی دولت تھی میرے عزیزو, ہمارے پہ اللہ نے نعمت اسلام دی تھی کہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں, لیکن آج ہم نے اسے چھوڑا ہے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں رہا. دیکھو دنیا کے اندر پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, عہدے بھی ہے, منصب بھی ہے, سب کچھ ہے دنیا کے پاس, لیکن دنیا میں اس وقت اسلام نہیں ہے, اسلام کی زندگی نہیں ہے. تو بتاؤ آج دنیا میں کہیں امن رہا, کہیں سکون رہا, کہیں چین رہا, کہیں محبتیں رہی, کچھ نہیں رہا. اور اس مدینہ منورہ میں کچھ نہیں تھا دنیا کے لحاظ سے, لیکن اسلام تھا. سبحان اللہ, کچے گھر بھی آباد تھے, بھوکے تھے لیکن ایک دوسرے پر پیار کرتے تھے, ان کے گھر کی دیواریں کچی تھیں لیکن سکون تھا, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, پیٹ ان کے پشتوں سے لگ گئے تھے لیکن احسان اور احسان دوسروں پہ کر رہے تھے. اور آج پیٹ بھرے ہیں تب بھی دوسروں کا گردے بیچتے ہیں, تب بھی دوسروں کا جسم بیچتے ہیں, تب بھی خوراک کے نام پہ دوسروں کو زہر کھلاتے ہیں, تب بھی اپنے گھر کو اور اونچا کرنے کے لیے دوسروں کا گھر اجاڑتے ہیں. اسلام جو نہیں ہے, ورنہ اسلام ہوتا تو یہ دنیا بھی جنت بنتی, دنیا بھی جنت بنتی. تو میرے عزیزو, اسلام خطرے میں آ جاتا ہے جب اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, اور اسلام محفوظ ہو جاتا ہے جب یہ اپنی زندگی سے گناہ نکال لیتا ہے. جیسے تالا اور چوکی دار ہیں تو کہتے ہیں اندر کا چیز محفوظ ہے, تالا بھی نہیں چوکی دار بھی نہیں اور بعض سارے ڈاکو گھوم رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اندر کا سامان غیر محفوظ, سارا ماحول خطرے والا ہے, سارا ماحول. اور اگر اس کا اثر یہ پڑا کہ ہمارا اندر کا ہماری زندگی سے گناہ شروع ہو گئے تو سمجھو اسلام خطرے میں آ گیا. آہستہ آہستہ اسلام نکلتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا سارا اسلام نکل جائے گا. ہاں, اپنی زندگی کے گناہوں سے بچا لیا اور تالا لگا لیا, کیا اچھی صحبت اختیار کر لی تو انشاءاللہ اس کا ایمان بچ جائے گا. ایک نوجوان آیا ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کے پاس, آ کر کہنے لگا ابراہیم کوئی ایسی چیز بتا دے کہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہوں اور گناہوں اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤں, اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہوں اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤں. یہ اللہ والے بھی بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں, نہ ڈرایا نہ دھمکایا نہ برا بھلا کہا اور اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹے ایک نسخہ بتاتا ہوں اس پہ عمل کر لو, گناہ بھی کرتے رہنا اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ گے. کہا حضرت ضرور بتائیں. ایسا مولوی صاحب تو بڑے اچھے ہیں کہ گناہوں سے بھی نہیں روکتے پکڑ سے بھی بچاتے ہیں. کہا بیٹے ایک نسخہ ایک تجویز دیتا ہوں وہ کر لینا. کہا ضرور بتائیں. کہا بیٹے ایسا کر, اللہ کی سلطنت سے نکل جا, جب تو اس کی سلطنت سے نکل جائے گا تو نہ اس کی بات ماننا ضروری نہ اس کا آرڈر ماننا ضروری. کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا, لہو مقالید السماوات والارض, زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اسی کی ہے, اسی کی حکومت ساری کائنات پہ تنی ہوئی ہے, کہاں نکل جاؤں گا. کہا اچھا بیٹے پھر دوسری تجویز پہ عمل کر لے, ایسا کر اللہ کا کھانا پینا چھوڑ دے, نہ تو اس کا کھائے گا نہ اس کی بات ماننا ضروری ہوگی. کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ نہ کھلائے تو کون کھلا سکتا ہے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, وہی تو ہے. یہ جب ماں کے پیٹ سے آیا تو اللہ نے ماں کی چھاتی پہ دودھ پہلے ڈال دیا, اور دنیا کے اندر اس نے آنکھ کھولی تو اللہ نے ہر ایک کے دل کے اندر محبت پہلے سے ڈال دی, ہر شخص اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے, یہ کون ہے. تو ہمیں حضرت یہ تجویز بھی قابل عمل نہیں ہے. کہ بیٹے پھر تیسری تجویز دیتا ہوں, ایسا کر کہ جب मरने लगे तो फरिश्ते से कहा इज़राइल से जरा ठहर जा, तौबा कर लो, जरा ठहर जा। कहने लगा हजरत ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअख़िरूना सा'अतन वला यस्तक़दिमून, जब ये घड़ी आती है तो एक लम्हे का इंतजार भी नहीं करते। एक नौजवान 31 साल का, 31 साल क्या उम्र होती है, और कैसे कैसे मनसूबे बंदी होती है, ये कर लूंगा, बाहर निकला, गाड़ी में बैठा, एक्सीडेंट हुआ, उसी लम्हे खत्म हो गया। अब तो वैसी जिंदगी है, लम्हों में खत्म हो रही है, कहां से अंधी गोली आए और उसका निशाना बन जाए। लेकिन ये नौजवान भी आज ऐसा लगता है यहीं रहने के लिए आया है। इसी इब्राहिम इब्ने अदम के पास एक शख्स आया, दरबार लगा हुआ। अब तक इब्राहिम इब्ने अदम को अल्लाह का प्यार नहीं मिला था, वही शनशाहना जिंदगी थी, दरबार लगा हुआ था। इतने में एक शख्स आया, वो कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है, तो इब्राहिम कहने लगे तुम दरबार में आए हो, क्या तलाश कर रहे हो? कहने लगा इस सराय में कहीं बैठने की जगह तलाश कर रहा हूं। सराय कहते हैं रास्ते चलने की, रास्ते चलते चलते रास्ते में थोड़ी देर बैठने की कोई जगह, सराय। तो इब्राहिम कहने लगे ये सराय है या मेरा महल है, ये शाही दरबार है, तुम इसे सराय कह रहे हो, इसकी तोहीन कर रहे हो। तो उसने बड़ी संजीदगी से कहा इब्राहिम ये बताओ कि तुम्हारे यहां परदादा रहा करते थे, वो कहां चले गए? कहा उनका कुछ अरसा इंतकाल हो गया है। कहा अच्छा तुम्हारे दादा फिर यहां रहा करते थे, वो कहां चले गए? कहा उनकी उम्र भी पूरी हो गई, वो भी दुनिया से चले गए। कहा अच्छा तुम्हारे बाप यहां दरबार लाया करते थे, आजकल वो नजर नहीं आ रहे। कहा भाई कुछ अरसा हुआ उनका भी इंतकाल हुआ। तो कहने लगा इब्राहिम ये सराय तो है, रहायशगाह थोड़ी है, ए सरायदार मुसाफरो बखुदा ये किसी का मकान नहीं, जो थे कल मुकीम कहीं उनका नामो निशान नहीं। सराय तो है, आज हम हैं तो कल कोई और है, हाँ आज हम हैं तो कल कोई और है। या साहिबी ला तग्तरिर बितनाउमी فإن النعيم يزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فعلم أنك بعدها محمول। میرے دوست دنیا کی نعمتوں میں دھوکے میں نہ رہنا, فإن النعيم يزول کبھی شباب چلا جاتا ہے, کبھی چہرے کا حسن چلا جاتا ہے, کبھی آنکھوں کی چمک چلی جاتی ہے, کبھی ہڈیوں کا گودا چلا جاتا ہے, کبھی کمر جھک جایا کرتی ہے, कभी जेब खाली हो जाया करती है, कभी फैक्ट्रियों पे दूसरे लोग बैठने लग जाते हैं, और एक वक्त आता है जिंदगी की नेमत भी चली जाती है। मत अपने हुसन पे इतराना, और मत अपने शबाब पे इतराना, और मत अपनी जेब भरे पे इतराना, और मत दुनिया की नसाइशों में रहकर अब से गाफिल होना। या कोई नहीं रहा, यहाँ सब आयते और चले जाया करते हैं। या साहिबी ला तग्तरिर बितनाउमी फइन्न नईम यज़ूलु वल उम्र यन्फुज़ु। तो इब्राहिम कहने लगे बेटा एक तजवीज देता हूँ, जब मरने लगे तो इसराइल से कहना जरा ठहर जा। तो नौजवान कहने लगे हजरत ये भी नहीं हो सकता, इसलिए कि जब वक्त आता है तो फिर इंतजार नहीं होता, फिर इंतजार नहीं होता। एक नौजवान ने अपना एक महल बना बड़ा शानदार, और उस शानदार महल के अंदर हर खूबसूरत चीज लगा दी। ऐसे लोगों को शौक भी होता है दुनिया आके देखे और तारीफ सुने। ये उसने आके लोगों को बुलाया, ऐसा घर बनाया मैंने, लोग आए बड़ी तारीफ करने लगे, बड़ा शानदार घर बनाया है। इतने में एक बूढ़ा जिसकी सर की आंखें तो कमजोर थी, दिल की आंखें बड़ी तेज थी, आकर कहने लगा बेटे तेरा घर बहुत खूब है, लेकिन इसमें दो खामियां हैं, दो खामियां। अब जवान हो, गाड़ी भी हो, जेब में पैसा हो, तो आज के जवान को बाप की बातें भी अच्छी नहीं लगती। कहता अब्बा ने तो मजे कर लिए, हमें रोकते हैं अब, अब्बा ने तो मजे कर लिए, हमें रोकते हैं। तो जवान औलादों को बसाओका तो बाप की बातें भी अच्छी नहीं लगती। तो वो एकदम उसके चेहरे पे नागवारी के आसार, कहने की बड़ी मियां सारी दुनिया तारीफ कर रही है, आपको मेरे घर में कौन सी खामियां नजर आ गई? तो बड़ी मियाँ के बेटे मैं तो तेरे खैर खाई में कह रहा हूँ, इसमें दो खामियां हैं। कहने लगे बड़े मियाँ बताओ, झुंझला कर कहने लगा बताओ कौन सी खामियां हैं। कहने लगे बेटे एक तो ये मकान हमेशा का नहीं, दूसरा इस मकान का रहने वाला भी हमेशा का नहीं। न मकान हमेशा का, न इसका मकीन हमेशा का। एकदम उस नौजवान का सर झुक गया, आंखों से आंसू बहने लगे, दिल पिघल गया अंदर से, कहने लगा बड़े मियां आप सही कह रहे हैं। अच्छा मेरे अजीज, उस जमाने में दिल इतने सख्त नहीं हुआ करते थे। एक डाकू भी डाका मारने गया और अंदर से आवाज आई, अलम यअनिल्लज़ीन आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अभी वो घड़ी नहीं आई कि तुम्हारा दिल अल्लाह की अजमत के सामने पिस जाए। तो डाकू सच्ची तौबा ऐसी करता है फ़ज़ल इब्ने अय्याज़ के, हजारों वलियों का सरदार बनता है। लेकिन आज इस आंख ने हराम इतना देखा है और लुकमे हराम ने दिल पत्थर बना दिया है। आज जो दो गुना है ना, जिससे अंदर का दिल पत्थर बन गया है, एक लुकमे हराम और दूसरा इस आंख का हराम देखना। इसलिए कब्र में उतर कर भी इसका दिल नहीं पिघलता। दोस्तों की लाश हाथ में रखकर जमीन पे जाते हुए कब्र में रखता भी इसका दिल नहीं पिघलता। इसकी आंखों के सामने इसके दोस्त चले जाते हैं, इसका अंदर नहीं पिघलता। ये दिल इतना सख्त हो गया इस आंख से हराम, इसलिए कि जिसकी आंख नापाक हो गई उसका दिल नापाक हो गया, और जिसका दिल नापाक हो गया उसकी शर्मगाह नापाक हो गई। जिसकी आंख काबू में नहीं उसका दिल नहीं काबू में रह सकता, और जिसका दिल नहीं काबू में रहा उसकी शर्मगाह नहीं काबू में रह सकती। ये पत्थर बन गया, नहीं पिघलता। अल्लाह का कलाम सुनता है, अल्लाह का कलाम सुनता है, कुरान सुनता है, मस्जिद में बैठता है, दिल नहीं पिघलता। चंद लम्हों के लिए सोच आती है फिर बदल जाता है, चंद लम्हों के लिए सोच आती है फिर बदल, पत्थर है दिल है पत्थर है। तो उस नौजवान का दिल इतना सख्त नहीं था, पिघल गया अंदर से, आंखें झुका ली, आंसू से बह आंसू जारी हो गए। कहने लगे बड़ी मियां मुझसे गलती हो गई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब मेरी खैर खाई तो पूरी कर दो ना, कोई ऐसी सोसाइटी बता दो जहां का रहने वाला भी हमेशा और जहां की सोसाइटी भी हमेशा, जहां का रहने वाला भी हमेशा और जहां की सोसाइटी भी हमेशा। तो बड़े मियां ने कहा बेटे मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में देख लो। फरमाया इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन फी जन्नतिन व उयून यलबसून मिन सुंदसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन कदालिक व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन यद'ऊना फीहा बिकुल्लि फाकियतिन आमिनीन ला यज़ूकून फीहा الموت इल्ला الموت الاولى। बेटे एक तस्वीर और भी है, फीहा अनहारुम मिन माइन गैर आसिन وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عصر مصفى। بیٹے ایک نقشہ اور بھی ہے, لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة। یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں کا شباب بھی پائیدار, جہاں کا حسن بھی پائیدار, جہاں کی آنکھوں کی چمک بھی پائیدار, جہاں دودھ اور شہد کی نہری میں پائیدار, جہاں میٹھے پانی اور جسے کہیں کہ شراب کی نہری میں پائیدار, اور جہاں کے پھل بھی پائیدار, اور جہاں کی جوانیاں بھی پائیدار, اور سب سے بڑھ کر جہاں کی زندگیاں بھی پائیدار, جہاں کی۔ یہ ہے وہ سوسائٹیاں جو تمہارا وطن ہے۔ تو اس نوجوان کی زندگی بدل گئی۔ تو ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نوجوان کہنے لگا حضرت یہ تجویز بھی قابل عمل نہیں, اس لیے کہ جب علماء آئے گا تو توبہ کی مہلت نہیں ملتی, توبہ کی مہلت نہیں ملتی۔ ہاں میرے عزیزو, وہ نوجوان توبہ کو ملتوی ضرور کر دے جسے پتا ہے کہ میں نے کچھ دن تک زندہ رہنا ہے, وہ ملتوی کر دے کہ نہیں ابھی تو مزے کے دن ہیں یار, پھر توبہ کر لیں گے, پھر توبہ کر, اب تو انجوائے کرنا۔ قسم خدا کی جس کے دل میں اللہ نہیں ہے وہ کبھی دنیا کے اندر انجوائے کر ہی نہیں سکتا, اسے پتہ نہیں انجوائے ہوتا کیا ہے۔ انجوائے تو ہوتا ہے دل کی خوشی, اور گناہگار کو کبھی اللہ دل کی خوشی نہیں دیتا, گناہگار کو کبھی اللہ دل کی خوشی نہیں دیتا, کبھی نہیں دیتا۔ جیسے پنجرے کے اندر پرندہ تڑپتا ہے نا, پرندہ تڑپتا ہے अब उस पिंजरे को आप काटन पहना दें फिर भी वो तड़पेगा, उसे आप मेरियड पे ले जाएं तब भी तड़पेगा, सहले समुंदर पे ले जाएं तब भी परिंदा अंदर तड़पेगा, खूबसूरत पार्क में ले जाएं तब भी परिंदा तड़पेगा। अगर आपने उस परिंदे को पानी दे दिया, दाने दे दिया, तो अब ये चाहे परिंदा झोपड़ी के अंदर हो, महल के अंदर हो, सुकून से होगा। ऐसा ही है ना, ऐसे ही मेरे और आपके जिस्म के इस पिंजरे के अंदर अंदर का एक इंसान है, वो इस वक्त बेसकून है, तड़प रहा है, बेचैन है। आप काटन पहनाए तब भी तड़पता रहेगा, समुन्द्र पे ले जाएं तब भी तड़पता रहेगा, शानदार कोठी में रखें तब भी तड़पता रहेगा, और शानदार एसी और गद्दे के अंदर सुला दें तब भी तड़पता रहेगा। इस अंदर के इंसान को तो वो रूह और वो गिजा चाहिए, वो क्या आसमान से उतरा हुआ इस्लाम की जिंदगी, वो मिल जाए झोपड़ी में रहकर भी सुकून से, महल्लात में रहकर भी सुकून से। चाहे इसको महल्लात में रखो उसे गिजा दे दो, चाहे झोपड़ी में रखो उसे गिजा दे दो। आज अंदर का इंसान तड़प रहा है, तभी तो नौजवानों को भी अब गोलियां खानी पड़ती है। हाय हाय क्या उम्र है गोलियां खाने की, नींद की गोली खा रहा। एक बार मेरे पास आया, वो बच्चा सीबीएम में पढ़ता था, कहने लगा हजरत मेरा बेटे ने 3 मरतबा खुदकुशी करने की कोशिश की है, 3 मरतबा। मैंने कहा क्या गाड़ी नहीं लेके दी? ऐसी मैंने पूछा, मैंने गाड़ी नहीं दी। कहा गाड़ी दी है? मैंने कहा आपके घर में बेरोजगारी है? कहा नहीं मेरी फैक्ट्री है। मैंने कहा क्या बात है फिर, ये उम्र है खुदकुशी करने की? हाँ हाँ, जब आदतें गंदी हो जाती है, जब आदतें गंदी हो जाती हैं और इस दिल के अंदर गंदगी आती है तो फिर सुकून चला जाता है, फिर रातों की नींदें उड़ जाती हैं, फिर आदमी अपने हाथों से अपने आप को मारने के लिए तैयार, इतना बेचैन होता है। यानी जो आदमी खुदकुशी करता है कितना बेचैन होगा, कितना बेचैन होगा। तो मेरे अजीजों, वो कहने लगा हजरत ये भी नहीं हो सकता, मौत तो आती है। कहा बेटे फिर चौथी तजवीज देता हूं, एक और ऐसा कर, जब कब्र में जाए, कब्र में जाए तो फरिश्तों को कहना कि अंदर नहीं आ सकते सवाल जवाब करने के लिए, एंट्री नहीं है। कहा तो ये भी नहीं हो सकता। कहा बेटे फिर आखिरी तजवीज इस पे अमल कर लो, वो ये जब तेरे खिलाफ दफा लग जाए जहन्नम में जाने की तो कहना मैं नहीं जाता। कहा तो ये भी नहीं हो सकता। अब जब 5 तजवीजें काबिल अमल नहीं, तो देखा हजरत ने इस नौजवान की दिल की जमीन साजगार हो गई, अब बीज डाला जा सकता है, बीज डाला जा सकता है। कहा बेटे जिस अल्लाह के हम इतने मोहताज हैं और उसके दर के इतने फकीर हैं, जिसके दर के इतने मोहताज हैं और उसके दर के इतने फकीर हैं कि उसके बगैर हमारा न सांस आ सकता है न जा सकता है, हाँ तो फिर उस रब की नाफरमानी करते हुए हया क्यों नहीं आती, हया क्यों नहीं आती। तो नौजवान कहने लगा हजरत आज के बाद मैं तौबा करता हूं, अपने अल्लाह की नियमतों की नशुकरी नहीं करूंगा। तो मेरा अजीजों क्या ही अच्छा है हम भी आहद कर लें कि आज के बाद अपने मौला को नाराज नहीं करेंगे। सब कह दें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अरे इंसान किस चीज ने तुझे इतने प्यारे रब से दूर कर रखा है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका, जिसने तुझे पैदा किया और इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाई। अगर ये आंखों की पलकें दाढ़ी की तरह बढ़ती तो कितना बुरा लगता, अगर ये दांत उंगलियों की तरह बढ़ते तो कितना बुरा लगता, और अगर ये कान हाथ की तरह बढ़ जाते तो कितना बुरा लगता, और ये आंखें यहां होती और ये मुंह यहां होता तो लुकमा खाते हुए कितनी तकलीफ होती। इसे दिखाओ, इधर सुनवाओ, इधर खाओ। अल्लाह अकबर। फरमा ऐसी तस्वीर बनाई जैसे तूने कहा कि मुझे ऐसे ही बना दो। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, आज गरीब से गरीब आदमी से भी कह दो कि मियां आंखें दे दे 5 लाख देता हूं, दे देगा? कहेगा 50 लाख दे तब भी भूखा रह जाऊं, आंखें नहीं दूंगा। लेकिन अल्लाह ने ये आंखें दे रखी है ना, आंखें उनसे पूछो जिनके पास नहीं है, ठोकरें खा खा के जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। तो ऐसा करीम दाता, और सुभानअल्लाह ऐसा करीम है कि रूठी माँ, माँ भी बड़ी प्यार करती है बंदों से, लेकिन उस माँ को राजी करना फिर भी मुश्किल, उस करीम दाता को राजी करना माँ से भी ज्यादा आसान है। अगर रूठी माँ के पास जाओ तो वो क्या कहती है, अब आए गए, लेकिन रब क्या कहता है, मेरे बंदे तू आ गया, मैं तेरे इंतजार में था। माँ के पास जाओ तो ताने देगी, रब कहता है मैं ताने भी नहीं दूंगा, तू आ तो सही, तेरे आने में देर है, मेरे माफ करने में देर है। इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह देख फरमाया लगे, एक बच्चे को मैंने देखा कि माँ उसे मार रही है, थोड़ी देर के बाद अपनी माँ का दरवाजा छोड़ के गली के कोने पे गया, वहां से फिर वापस आकर चौकट पे आके सर रख कर सो गया। माँ थोड़ी देर के बाद उठी फिर मारने लगी, लेकिन बच्चा सीने से चिमट गया और कहने लगा, अम्मा मैं तेरे घर से जाने का फैसला कर चुका था कि जिंदगी के बकिया दिन लोगों के जूते साफ करके पूरे कर लूंगा और भीख मांग के पेट भर लूंगा, लेकिन मैं कोने पे गया तो मेरे दिल ने चोट मारी, सब कुछ हो सकता है लेकिन माँ की ममता कहाँ मिलेगी। वापस आ गया, जब ये सुना कि माँ की ममता कहाँ मिलेगी, तो माँ ने उसे सीने से लगा लिया, माफ कर दिया। तो इब्ने कय्यिम फरमाने लगे, अगर कोई बंदा अल्लाह के दरबार में आए और यूं कहे, इलाही अब्दुकल आसी قد اتاك وقرا بالذنوب وقد دعاك فان تغفر فان لذلك اهله فان لم تغفر فمن يغفر سواك مولا تیری چوکٹ پہ حاضر ہوں، مانا میرا شباب بھی گندہ ہو گیا، مانا کہ میری آنکھیں بھی ناپاک ہو گئیں، مانا کہ کانوں سے موسیقی سن کے میں نے اپنا دل کو اجاڑ دیا، مانا کہ ماں باپ کا دل بھی دکھایا ہے، مانا کہ دوسروں کے بیٹیاں دیکھ کر اپنی آنکھیں بھی ناپاک کی ہیں، مانا کہ میرا خون بھی سفید ہونے کو ہے، مانا کہ میرا شباب بھی داغ ہی داغ سے بھرا پڑا ہے، لیکن مولا تیرے در کے سوا کوئی در بھی تو نہیں، تیرے چوکٹ کے سوا کوئی چوکٹ بھی نہیں، اگر معافی مانگے تو کہاں جائیں، تیرے در کے سوا تو کوئی در نہیں۔ کوئی اس ندامت کے ساتھ اللہ کے در پہ آئے، اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں۔ دنیا کی عدالتیں معاف کرتی ہیں تو ریکارڈ محفوظ کرتی ہیں، اللہ کی عدالت ایسی رحمت بھری ہے، معاف بھی کر دیتا ہے ریکارڈ بھی جلا دیتا ہے، تاکہ کل قیامت میں میرے بندے کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یعنی ہم میں سے کتنے ایسے قصور والے ہیں، ہم میں سے سب، ہاں اگر اس کی تصویر دنیا کے سامنے دکھا دی جائے تو منہ اٹھا کر نہ چل سکے، لیکن اللہ ہے پردہ ڈالا ہوا۔ ہاں کیا یہ اچھا ہے میرے عزیزو، کچھ تنہائیوں میں اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ اللہ ہمیشہ کے لیے اس پہ پردہ ڈال دے، ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دے۔ حضرت عمر، آخری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہا ہے تو راستے میں ایک نوجوان رو رہا اور زاروں قطار رو رہا، حضرت عمر نے فرمایا چلو نا اندر، کہا نہیں مجھ سے گناہ ہو گیا، میں حضور کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا، کہا اللہ سے معافی مانگ لو اللہ معاف کر دے گا، فرمایا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ یہ اندر چلے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول ایک نوجوان ہے بعض زاروں کے تار رو رہا ہے، اندر آنے کے لیے بھی تیار نہیں، حضور خود باہر تشریف لائے، دیکھا ہے نوجوان آنسوں کی برسات میں زاروں قطار رو رہا ہے، کہا بیٹے کیا ہوا، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا، کہا اللہ سے معافی مانگ لو، کہا بہت بڑا گناہ ہوا، کہا اللہ کی بخشش اس سے بڑی ہے تو معافی مانگ، کہا اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہوا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تو کیا ہوا، کہا یا رسول اللہ مدینہ میں ایک بچی کا انتقال ہوا، میں کفن چوری کیا کرتا تھا، کفن چوری کیا کرتا تھا، جب مدینہ کی اس بچی کا انتقال ہوا تو میں رات کو اس کا کفن چوری کرنے کے لیے قبرستان گیا، لیکن میری شیطانیت عروج پر تھی، میں نے اس مردہ بچی کے ساتھ بھی منہ کالا کر لیا۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے رنگ بدل گیا، ماتھے پہ بل آ گئے، اب یہ نوجوان روتے روتے پہاڑوں پہ چلا گیا، روتا رہا 40 دن گزر گئے روتے روتے، اللہ سے عرض کیا اللہ अगर मेरी माफी हो गई तो अपने हबीब को बता दे, अगर मेरी माफी नहीं तो आसमान से अंगारे भेज, आग भेज, मुझे ख़त्म ही कर दे, इस ज़मीन को मेरी गंदगी से पाक कर दे। जिब्राइल आए, कहा अल्लाह का रसूल के अर्ज किया कि अल्लाह ने कहा है कि उस नौजवान को बताओ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे माफ कर दिया है, अल्लाह ने उसे भी माफ कर दिया। तो मेरे अजीजो, हमारे गुनाह बहुत सही, लेकिन अल्लाह की रहमत इससे बढ़कर है। लेकिन शर्त है, आओ तो सही अल्लाह की तरफ, आओ तो सही अल्लाह की तरफ। तो एक तरफ में अजीजो अल्लाह की तरफ आओ और सच्ची तौबा करो, और दूसरा अपना माहौल बनाओ, अपना माहौल बनाओ। देखो हर स्कूल में, हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह एक माहौल है, कुछ न कुछ तबलीग के हल्के नौजवान साथी आपको तबलीग में लगे हुए मिलेंगे। हाँ, हर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम है। इसी तरीके से मेरे अजीजो उलमा की सोबत में जहाँ इतवार का बयान के जुमे का बयान मुख्तलिफ मौके होते हैं, इन माहौलों में अपने आप को जोड़ोगे ईमान बच जाएगा, इन माहौलों में अपने आप को जोड़ोगे ईमान बच जाएगा, और माहौल की बरकत से मुश्किल आसान हो जाती है। माहौल ना हो तो आसान भी मुश्किल होता है। तो एक तो भी रजीज़ हो सच्ची तौबा, और दूसरा अपने आप को अच्छे माहौल में रखो। अल्लाह के नबी फरमाया करते थे अल इंसानु अला दीन खलीली फलयंजुर इला मन युखालिल, आदमी अपने दोस्त की जिंदगी इख्तियार कर लेता है, इसलिए दोस्त बनाने से पहले सोचो किसको दोस्त बना रहे हो। ये शीशा नहीं पीता था, इसके दोस्त पीते थे, ये भी पीने लग गया। ये सिगरेट नहीं पीता था, दोस्त पीते थे, ये भी पीने लग गया। इसके शरीर घराने के तसव्वुर से बाहर था कि ये बेटा शराब पिएगा, लेकिन सोसाइटी गलत मिली, ये भी शराबी बन गया। कभी इसके अबाव अजदाद में ये तसव्वुर भी नहीं था कि इस नौजवान का शबाब भी गंदा हो जाएगा, लेकिन बहुत कम कर चुका है। क्यों? बेचारों को सोसाइटी सही नहीं मिली, सोसाइटी सही नहीं मिली। और हमने ऐसे भी देखा बड़े बिगड़े हुए अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छे दोस्त मिल गए, ऐसे नेक बने कि बाकियों की नेकी का जरिया बन रहे। तो मेरे अजीजों, एक तो तौबा करनी है, तौबा करनी है कि मौला हमने तेरा बनना है। अब इस तौबा पर बाकी रहे, माहौल में जुड़ जाओ। हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग के हल्के हैं, तबलीग की जमात है, वहां कुछ ना कुछ नौजवान नमाज पढ़ते हैं, हम सब वहां उनके साथ बैठ के नमाज पढ़े। हाँ, फिर जुमे में, इतवार में, जहां भी बयानात होते हैं उलमा की सोबत में बैठे, मस्जिद के माहौल में आए, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह हमारी तौबा पायदार रहेगी। तो इसका एहतमाम करेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा, अभी कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, घर जाएंगे, इसलिए कि हमने कौन सी नमाज पढ़नी है? फिर फजर पढ़नी इंशाअल्लाह। हैं, अल्लाह बहुत बरकत दे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے مولا اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا یہ تیرے نوجوان بندے نوجوان بچے اے اللہ نوجوان تیرے امتی اے اللہ تیرے نبی کے پیارے امت تیرے نبی کے پیارے نوجوان سب بچے اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی کامل بخشش فرما دے مولا یہ تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں مولا گناہوں کے ماحول سے نکل کر تیرے در پہ حاضری دی ہے مولا تو اسی کے علاج رکھ کے ہمیشہ کے لیے ان کو اپنا بندہ بنا دے اپنے گھر کا بنا دے اپنے دین کا بنا دے اے اللہ اپنا پیارا بنا دے ان سب کو اپنی رحمت کا سایہ دے دے اپنی مدد اور نصرت کا سایہ نصیب فرما دے مولا ابھی انہیں اپنے گھروں سے کبھی محروم نہ فرما اپنے سامنے جھکنے سے محروم نہ فرما اے اللہ اپنی فرما برداری سے محروم نہ فرما مولا ہم کمزور لوگ ہیں ہم کم ہمت ہیں حوصلہ نہیں ہے مولا ماحول کا مقابلہ کرنے کا لیکن مولا تیری رحمت سے امید ہے اب تو ہمیں محروم نہ فرما اے مولا تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما ہمارے قصوروں کو معاف فرما مولا بہت ہی گندے ہیں بہت ہی گندے ہیں مولا گناہوں سے بھری زندگی ہے مولا زبانوں پر بھی وہ گناہ نہیں آ سکتے لیکن مولا تو سبھی جانتا ہے نا اے مولا ہم سب کو معاف فرما اے مولا ہم سب کو معاف فرما، اے مولا ہم سب کو معاف فرما، مولا ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کا بھی دل دکھایا اور تیرے نبی کا بھی دل دکھایا، اے مولا تجھے بھی ناراض کیا، اے مولا تو ہمیں اب معاف فرما دے، اے مولا ہمیں معاف فرما دے، اے مولا ہم نے اپنا شباب بھی خراب کیا، اپنی آنکھوں کو بھی ناپاک کیا، مولا ان کانوں سے بھی گن سنا، اے مولا بہت قصوروار ہیں، لیکن اب مولا اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اے مولا اب گناہوں کے گندگیوں سے محفوظ فرما، اے مولا اب برے ماحول سے محفوظ فرما، بے حیائی سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے مولا موسیقی سے محفوظ فرما، اے مولا ہمارے دل کو گندگیوں کو صاف فرما، مولا ہمیں دلوں میں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، مولا ہمیں دین پہ چلنے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، مولا برے دوستوں سے محفوظ فرما، برے ماحول سے محفوظ فرما، ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے لیے راحت کا سامان بنا، اے اللہ اسلام کا سچا دائی بنا، دین کا سچا خادم بنا، اسلام کا سچا وفادار بنا، اپنے ملک کا سچا وفادار بنا، اے مولا قومیت فرقوں کی بنیادوں پہ نفرتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك.